Jaya Radha Madhava Kunja Bihang Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Griva Radha Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Griva Radha Hari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vana Chahari Yamuna Tera Vana Chahari Jaya Radha Madhava Kunja Bihang Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihang Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihang Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Griva Radha Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Griva Radha Hari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vana Chahari Yamuna Tera Vana Chahari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihang Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Griva Radha Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Griva Radha Hari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Brajadana Ranjana Yamuna Tera Vana Changhari Yamuna Tera Vana Changhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihangari Jaya Radha Madhava Kunja Bihangari Jaya Radha Madhava Kunja Bihangari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe Jaya Radha Raj Bihari Radha Raj Bihari Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhe Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Radha Vinod Bihari Radha Vinod Bihari Radhe Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Radhe Jaya Radha Vallabha Radha Vallabha Radhe Jaya Radha Banki Bihari Radha Banki Bihari Radhe Jaya Radha Radha Kanta Radha Radha Kanta Radhe Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jai Om Vishupad, Paramahamsa Vrugvachaya, Shota, Shota, Shishama, Chila. Hey, Sivakti Vedanta Swami Chila Prabhupada Ki. Jai Om Vishupad, Paramahamsa Vrugvachaya, Shota, Shota, Shishama, Chila. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Chila Prabhupada Ki. Ananta Kodi Vaishnavarinda Ki. Sirup Sisanatan Bhattaraganachi Jeeva Gopala Bhattarasaraganat Sari Goswami Prabhu Ki. Premse Gosi Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Siyadeta Gadadar Shivajari Gaura Vakta Vrindaki Sisi Radha Krishna Go Gopa Gopi Gopi Nacham Kundradha Kundigiri Govadanaki Vrindavan Dhamki Mathura Dhamki Mayapalambi Dhamki Jaganapuri Dhamki Tulsi Maharani Bhakti Deviki Ganga Yamuna Deviki Harinam Sankirtan Yagyaki Sri Sri Gonitaiki Sri Sri Krishna Balaram ki, Sri Sri Radha Shama Sundar ki, Gaur Premanande Hari Hari Bol, Samaveta Bhakta Vrinda ki, All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shigra and Shiguranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayamudirayet nashtabhayeshabhadesho nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shlokke bhaktir bhavati naishtikim ete cham sakalapum sam krishnastu bhagavan sayam indriyarvyaklam lokam ridyante yuge yuge Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranama Dukkha Samanastam Namami Harim Param. Om Shiva Bhagavatam se par raha hai. Atvaskant. Dvitya Adhyay. Shlok Sankhya 9 se. 19 तक Tasya Dronyam Bhagavato Varunasya Mahatmanaha Udyanam Ritumam Nama Akridam Suryoshitam Sarvato Alankritam Dibhyair Nitya Pushpa Paladrumai Mandarai Parijataischa Patala Shoka Champakai Chutai Pyalai Panasair Amrai Amratakai Rapi Kramukai Narikelaischa Karchorair Bijapurakai Madukai Shalatalaischa Tamalair Asanarjunai Aristo Dumbura Plakshair Vattai Kimshuka Chandanai Pichu Mardai Kovidarai Saralai Suradarubhi Takshekshu Ramba Jambu Bhir Badar Badari Akshabhaya Malai Anuvad. Trikut Parvat ki gati mein rituman namak ek udyan tha. यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ास्थल था. यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते थे. इनमें से मंदर परिजात पातल अशोक चंपक अम्रविशेष चुत पियाल पनस आम अमृतक क्रमुक नारियल खजूर तथा अनार मुख्य थे. वहाँ पर मधुक तार तमाल असन अर्जुन अरिष्ट उदुम्बर प्लक्ष बरगद किमशुक तथा चंदन के वृक्ष थे. वहाँ पर पिचुमार्द कोविदार सरल सूरदारु अंगूर गन्ना केला जाम्बू बदरी अक्ष अबाय तथा आमले भी थे. श्लोक 14-19 तक. बेलवाय कपितायर जाम्बीरायर वीरो भलत का दिवीन तस्मिन् सरासु विपुलम् लासर कंचन पंकजम् कुमुद उत्पलकालारम् शतपत्रसियोर्जितम् मतसत्पद निर्गुष्टम् सकुंतैश्च कालस्वनाय हंसकरन्दवाकीर्णम् चक्रवाय सरसैरपि जालकुक्कुटकोऽस्ति तत्युहाकुलकोजितम् मच्छकच्छपसंचर चालत पद्मरजापया kadamba vetasana la nipavanjula kaivritam kundai kuru kundai kuru hakaksho kai shirishai kuja kengudai kubja kai swanayuti bir naga pu naga jati bhi malika shatapatraischa madavi jalakadi bhi shobitam tirajais chanyair nitya tu bir alam drumai अनुवाद और तत्पर्य शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद कनार उत्पल एवं शतपत्र फूलों से भरा था, जिनसे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में बिल्व कपिता जंबीय तथा बलतक वृक्ष भी थे। मदमद बोरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चाह चाहत के साथ वे भी गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों करंदावों चक्रवाकों सारसों जलमुर्गियों दत्युहों कोयिष्टियों तथा अन्य चाहते पक्षियों के झुंड थे। मछलियों तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो पराग कान गिरे थे उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदंब पुष्प बेतस पुष्प नल नीप बंजुलक कुंड गुरुबक अशोक शिरीष कुतज इंगुद कुब्जक स्वर्ण युथि नाग पुनाग जति मलिका शतपत्र जलका तथा माधवी लाते थी। सरोवर के तट ऐसे वृक्षों से बलिभांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। तत्पर्य त्रिकुट पर्वत की नदियों तथा सरोवरों के ऐसे विशाल वर्णन से यह निर्णय निकलता है कि पृथ्वी पर ऐसे उत्कृष्ट सौंदर्य का कोई जोड़ा नहीं मिलता, किंतु अन्य ग्रहों में ऐसे अनेक आश्चर्य है। उदाहरणार्थ हमें ज्ञात होता है कि वृक्ष 20 लाख किस्म के होता है, किंतु ये सभी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। श्रीमद् भगवतम ब्रह्मांड की सारी बातों का पूरा पूरा ज्ञान प्रदान करता है। इसमें न केवल इस ब्रह्मांड का वर्णन मिलता है अभी तो इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक जगत का भी विवरण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भगवतम में वर्णित भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के इन वर्णनों को चुनौती नहीं दे सकता। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के प्रयास असफल हो चुके हैं, किंतु पृथ्वी के लोग यह समझ सकता है कि अन्य ग्रहों में क्या क्या विद्यमान है। इसके लिए किसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम से वास्तविक ज्ञान ग्रहण करके संतुष्ट हो सकता है। ओम ज्ञाना तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतवतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च शेरूपं सागर जातं सहगना रघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन चैतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललित श्री विशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोविगंता राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानु सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च परीतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव चरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के आठवां स्कंध की शुरुआत गजेंद्र के बारे में चर्चा हो रहा है। गजेंद्र हाथी के रूप में है, कोई साधारण हाथी नहीं थे। पिछले जन्म एक राजा थे, लेकिन कुछ गलतियों के फलस्वरूप हाथी के रूप में उनका जन्म हुआ। भगवान की कृपा से फिर भी उनके पास ज्ञान था, और जब संकट में थे भगवान को स्मरण करते हुए भगवान की स्तुति की थी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पर स्थित सरोवर, जो ये दूध के सागर के बीच में द्वीप के अंतर्गत, और त्रिकुट विशाल पर्वत वहां पर के आसपास है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में उल्लेख किया है कि इस भौतिक जगत के बारे में 14 भुवन है, जिससे यहाँ पर हम अभी भूमंडल में स्थित है, केंद्र में है, जम्बू द्वीप के अंतर्गत है, सुमेरो पर्वत है बीच में, और दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर और पश्चिम की ओर अलग अलग खंड है। इसमें एक है जो दक्षिण की ओर है, भारतवर्ष है, और जो वास्तव में ये भौतिक जगत जो आपको अभी मालूम है जानते हैं, और लोग जो इस भौतिक जगत में भी इस पृथ्वी पर सोचते ये सब कुछ है, लेकिन उनके पास ज्ञान है ही है, लेकिन भगवतम से समझ सकता है कि पृथ्वी जो हम अभी देखता है समझ सकता है, तो ये सिर्फ भारतवर्ष के एक छोटा सा भाग है, और उत्तर की ओर विशाल पर्वत है, हिमालय पर्वत, और इसके बाद किमपुरुषवर्ष स्थित है। तो यहाँ पर दूसरे द्वीप के बारे में बताया गया है जो इससे जम्बद्वीप से श्रेष्ठ है, और वातावरण यहाँ से श्रेष्ठ है, और जैसे आजकल विशेष करके कलयुग के प्रभाव से सुंदर वातावरण मिलना और देखना कठिन है, जैसे यहाँ पर ब्रज में, ब्रज तो वास्तव में कृष्ण के लीला स्थान है, इस भौतिक जगत में राम्य स्थान है, वृंदावन राम्य स्थान है, लेकिन ये कि आजकल के लोग के भावना के और उनके कार्य के फलस्वरूप जो वातावरण जैसे 50 साल से पहले जो सुंदर राम्य स्थान यहाँ पर था, आजकल ऐसा नहीं है। फिर भी धाम तो है लेकिन आच्छादित हो जाता है, जिस बहुत सारे जब पहले हम यहाँ पर आए थे 40 साल 42 साल से पहले हम परिक्रमा करते थे ब्रज के वृंदावन के, तो इसमें तो मार्ग परिक्रमा मार्ग इसमें सिर्फ रेत था, रमन रेती, तो अभी तो पक्का हो गया रास्ता, और फिर भी परिक्रमा तो है, और जब करता है आनंद अनुभव कर सकता है, लेकिन जैसे 40-50 से पहले था ऐसे तो नहीं है आजकल, और बहुत सारे गारों है यहाँ पर। ठीक है, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हर गार में ठाकुर जी हैं, अच्छा है, और लेकिन बहुत सारे जैसे बिल्डिंग्स जो होता है, इमारत जो होता है, जो बस्ते में अच्छा नहीं लगता है, एकदम सुंदर नहीं है, जिससे पहले घर और महल थे बहुत सुंदर थे और शास्त्र के अनुसार बनवाए गए थे, जिसे मंदिर हमारे मंदिर सुंदर है, दूसरे मंदिर भी जो शास्त्र के अनुसार से बनवाए गए थे ये सुंदर है, और क्योंकि पहले लोग भगवान को ज़्यादा मानते थे तो वातावरण सात्विक था, और जैसे यहाँ पर भी उल्लेख किया है इन श्लोकों में कि बहुत सारे वृक्ष थे उसी समय वहाँ पर के त्रिकुट पर्वत के, जो हम तो यहाँ पर नहीं देख सकते, जो यहाँ पर नहीं है, और आजकल जैसा भी यहाँ पर भी वृक्ष है, और लेकिन कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा घरों है अभी, जैसे जहाँ पर हम रहते हैं मधुबन कॉलोनी पीछे एक बगीचा है, अभी तक है, अच्छा है, लेकिन जो सामने और रास्ता के दोनों साइड पहले उसी समय भी उद्यान थे और बहुत सारे वृक्ष थे वहाँ पर, विशेष करके आम के वृक्ष, और जैसे इसमें भी उल्लेख किया अलग अलग पशु पक्षी आ जाता है जब वातावरण सात्विक है, सुंदर है, जब वृक्ष है, फूल है, लताएं है, जिसमें उस लेख किया, इसमें लेख किया है, तो उसी समय भी 30-40 साल से पहले बहुत सारे वृक्ष थे, आम के वृक्ष, दूसरे के। और जब वृक्ष है तो मयूर भी आ जाता है, तोता भी आ जाता है, और सुबह उठ के जब करते थे तो मयूर के सुंदर ध्वनि, तोता के ध्वनि भी सुन सकते थे। जिससे मेरे घर के पीछे तो बगीचा है, अभी भी है, और उद्यान में मेरे पास भी वृक्ष है नीम के, तो लगभग हर रोज एक मयूर आ जाता था, तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्योंकि ज्यादा इमरत है, घर है अभी आसपास, तो तोता ना आ जाता है, मयूर ना आ जाता है। किंतु भगवान की कृपा से जब कृष्णा केंद्र में है और जब कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, पढ़ता है और बोलता है, तुमको स्मरण कर सकता है और आनंद पूर्वक रह सकता है। और उसी समय जैसे हम, और इसमें भी उल्लेख किया है कि श्रीमद् भागवतम में इस भौतिक जगत के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे 14 भुवन है, तो भूमंडल है, इसके ऊपर स्वर्ग लोग है, अलग अलग लोग है, वहां पर इंद्रदेव, इंद्र जी वहां पर रहता है स्वर्ग लोग में, और जनलोक है, तपलोक है, और सर्वोत्तम लोक है ये जहां पर ब्रह्म जी रहते हैं, सत्यलोक। और इसके बाद भूमंडल के नीचे अलग अलग लोक है, जो लोग रहता है जो भगवान को नहीं मानता है, नरक भी है, जो गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद नरक लोग चले जाता है, और वहां पर बहुत कष्ट मिलता है। तो सब इस वर्णन, इस श्रीमद् भागवतम में इसका पूरा वर्णन किया गया है। और इसके बाद आध्यात्मिक जगत के बारे में भी बताया गया है, हमारे संत महापुरुष जैसे सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, शिव जी इत्यादि। तो उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से और उनके प्रतिनिधि की कृपा से हम पूरा ज्ञान मिल सकता है, जिससे हम साधन भजन कर सकता है, जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा सकता है, इसमें लीन हो सकता है भगवान के चिंतन। विशेष करके हमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम समझ सकता है कि सर्वोत्तम जगह गोलोक वृंदावन है। और तो वहां पर महाप्रभु की कृपा से हम वहां पर जा सकता है, जब उनके उपदेश का पालन करता है। और इस काली युग में तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु, जो काली युग के अवतार है, युग धाम में स्थापित किया है, यह है कि मां मंत्र का जप कीर्तन करना युग धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो मां मंत्र के माध्यम से हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं, किंतु इसके लिए हमको बहुत अच्छा तरह से साधन भजन करना है। और जो आज्ञा है, जो भगवान के प्रतिनिधि है, जो भवुक रसिक वैष्णव है, ब्रज के वक्ता है, जब उनके सन्निध्य में है, उनके मुकुर अरविंद से कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, तब इसमें प्रवेश कर सकता है और उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। दूसरे लोग जैसे इसमें भी प्रभुपाद तत्पर्य में उल्लेख किया है कि दूसरे लोगों को कुछ नहीं मालूम है इस भौतिक जगत के बारे में। शिव जो भगवान को मानता है, विशेष करके जो श्रीमद् भागवतम और वैदिक साहित्य जो है और चैतन्य महाप्रभु के परिकार के साहित्य जो है, शास्त्र जो पढ़ते है सुनते हैं, ये समझ सकते हैं अच्छा तरह से, अन्यथा किसी को नहीं मालूम है। जैसे काफी लोग भगवान को मानता है, जैसे कृष्ण लोग हैं, मुसलमान भी, लेकिन उनके शास्त्र में सबका वर्णन पूर्ण रूप से किया गया या नहीं है, इसलिए उनको लगभग कुछ नहीं मालूम है और दूसरे के बारे में क्या कह सकता है। जो भगवान को नहीं मानता है, जो वैदिक साहित्य नहीं मानता है, उनको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है। और इसमें भी उल्लेख किया है कि प्रभुपाद और कि चंद्रमा जाने की प्रयास किया है, तो उसी समय भी टीवी में भी सब लोग देख रहे थे कि चंद्रमा पहुंच गया और सब आश्चर्य की बात, चंद्रमा पहुंच गया है, लेकिन वास्तव में ना ही पहुंच गया है। जैसे है ना, अभी फिल्म भी जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म है, बहुत कुछ दिखाता है और लगता है कि ये वास्तव में तो हो रहा है, लेकिन फिल्म है ना। वैसे ही जो जो यहां पर मैं चंद्रमा पहुंच गया है, तो ऐसे तो बनाए गए थे फिल्म, वो सब मान लिया, ऐसे कर दिया था, मान लिया, गुप्त जगह गुप्त स्थान पे सब किया है व्यवस्था फिल्म बनाने के लिए, और लेकिन घोषित किया आप चंद्रमा पहुंच गया। और दूसरे लोग भी तो आश्चर्यचकित थे, और रशियन लोग जो है उन्होंने भी कोशिश किया, लेकिन देखे संभव नहीं है चंद्रमा पर पहुंच लेना, तो आश्चर्य की बात है, लेकिन अमेरिकन वहां पर पहुंच गया, धोखा दिया सबको सबको, और मान लिया वहां पर चंद्रमा पहुंच गया। लेकिन जो यहां पर है भारतवर्ष में, जिनके पास ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान, उनको मालूम था ये झूठ है, संभव नहीं है, वहां पर कभी नहीं पहुंच गया, क्योंकि वहां पर जाने के लिए योग्यता चाहिए चंद्रमा वहां पर और स्वर्गलोक पर पहुंचना। और लेकिन वास्तव में वहां पर जाने की क्या जरूरत है, वहां पर क्या मिल सकता है, भौतिक जगत में तो है, लेकिन वास्तव में हमको कहां पर जाना है, आध्यात्मिक जगत, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, लेकिन सर्वोत्तम जगह गोलोक धाम है, वैकुंठ के सर्वोत्तम जगह वहां पर है, वैकुंठ लोक में ना, वहां पर के कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक चार भाग में विभाजित है, मथुरापुरी, द्वारकापुरी और ब्रज धाम, और इसके साथ भी है श्वेतद्वीप नवद्वीप, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। और इसमें भी प्रभुपाद ने उल्लेख किया है कि सबसे बड़ा लोक जो है गोलोक है, और सब दूसरे वैकुंठ लोक गोलोक धाम से चौथा है, सबसे बड़ा लोक गोलोक धाम है, जहां पर कृष्णा, यशोदा नंदन, गोपीनाथ, स्वयं भगवान है, मूल रूप है, आदि पुरुष है, पुरुषोत्तम है, सबके स्रोत है, सबके उद्गम है, दूसरे भगवान जो है उनके उनके विस्तार रूप है, तो वहां पर विराजमान है लेकिन गोप के रूप में खेल रहा है, और वहां पर उनकी जो परिकर जो है उनको नहीं मालूम है कि ये भगवान है, ये हमें मित्र है, हमारे दोस्त है, लला है, यशोदमा सोचिए मेरे लला है। और इसके बाद गोपियां हैं, श्रीमती रानी इत्यादि, तो प्रेम संबंध है वहां पर, ऐश्वर्य भावनाएं है कि ये भगवान है, हम उनकी पूजा करना है, उनकी सेवा करना है, हम उनके सेवक है। नहीं, सेवा तो कर रहा है लेकिन घनिष्ठ संबंध में। तो हाँ, वहां पर जाना कि जाने की सौभाग्य, तो जब पलंग कर रहा है महाप्रभु के और गुरु के आदेश का पलंग करता है, तो वहां पर पहुंचने की संभावना है। तो हम प्रयास कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो सब इसमें भगवतम महाप्रभु के ग्रंथ में, उनके परिकर के ग्रंथ में उल्लेख किया है। लेकिन यह भी है कि जो ग्रंथ जो है भगवत श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चतुर्मृत इत्यादि चैतन्य भागवत, ये वैष्णव के संग में हमको पढ़ना है, जिस समझ चतुर से समझ सकता है कि कैसे शरण भजन करना है, क्या महत्वपूर्ण है। तो शस्त्र जो भगवान के वास्तव में अभिन्न स्वरूप है, जैसे शिव भगवतम और चैतन्य चतुर्मृत, चैतन्य महाप्रभु के बारे में है तो चैतन्य चतुर्मृत महाप्रभु के स्वरूप है। इसलिए जो प्रवक्ता जो है, जैसे कभी कभी भगवत कथा होता है तो ये उनकी आराधना कर रहा है शास्त्र के, जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य या आरती कर रहा है ठाकुर जी के, तो भगवत के भगवतम के चैतन्य चतुर्मृत के की पूजा भी आरती भी कर सकता है। किंतु वैष्णव के संग में विशेष करके जो आ गया है तो भगवत श्रवण करना है। महाप्रभु बहुत बार अलग अलग भक्त को बताते थे कि भगवत भक्त भगवत के सन्निध्य में श्रवण करना है या पढ़ना है, अध्ययन करना है, तब अच्छे तरह से सब कुछ समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद भी तो श्लोक तो अनुवाद किया है संस्कृत श्लोक में, संस्कृत श्लोक के हिंदी में और अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि जो संस्कृत मालूम है अच्छा तरह से ये लोग तो ज्यादा लोग नहीं है। कौन मालूम है संस्कृत अच्छा तरह से यहाँ पर, कौन है कोई यहाँ पर, ज्यादा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद तो अनुवाद किया है और इसके बाद, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है, तो अनुवाद किया है लेकिन तत्पर्य दिया है, व्याख्या किया है, जिससे हम अच्छे तरह से समझ सकता है कि क्या इसमें कहना चाहता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि जो उनके वाणी है, तब तो बिना गुरु की कृपा तो समझना संभव नहीं है। और ये भी है कि सिर्फ भगवत श्रवण भी और गुरु के सन्निध्य में रहना, इसके अलावा भी यह है कि ये भी वास्तव में तो करना ही है, लेकिन इसके अनुसार भी चलना है। सिर्फ भगवत श्रवण पर्याप्त नहीं है, और गुरु के पास जाते हुए उनके मुखरविंद से श्रवण करता है कि ये करना वो करना है, लेकिन इसके बाद तो करना भी है। तो जो प्रभुपाद बताए गए थे और उनके शिष्य भी, तो इसके अनुसार हमको चलना है। अनुगत्य में हमको चलना है, उनके अनुगत्य में, शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में चलना है। और विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, प्रभुपाद भी कहते थे और सब पूर्वाचार्य कहता है कि हम रूप वैष्णव है, सदक के शरीर में रूप गोस्वामी के अनुसार हम साधन भजन करता है। यहां पर भी जिसे साधन भजन करना है, लेकिन गति क्या है हमको मालूम होना चाहिए, इसके अनुसार साधन भजन करना है। परम गति है तो यह है कि ब्रज में प्रवेश करना है, तो साधन की अवस्था पे भी तो भजन करता है, जप करता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, स्वस्थ का अध्ययन करता है, अलग अलग सेवा करता है, लेकिन किसके लिए? जिससे हम ब्रज में प्रवेश कर सकते अंत में, जिससे हम साधक के और अपने जीवन में तो भगवान का स्मरण कर सकते, कृष्णा के जो ब्रज के प्राणनाथ है। जैसे ठाकुर जी की सेवा होता है, प्रभुपाद उन्होंने भी बोला है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहा है जैसे लक्ष्मी नारायण, समझना चाहिए लक्ष्मी नारायण है हमारे सामने, उल्लेख किया है। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि यह सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है और हम भगवान के दास है। भगवान है, हम उनके दास है, हम तुच्छ है। तो पहले यह समझना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति छोड़ना है। तो इसके बाद हम आगे जा सकता है। तो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, भगवान ही है जिसे लक्ष्मी नारायण है, जैसे क्योंकि प्रभुपाद कहते थे क्योंकि कृष्णा ऐसा नहीं लगता कि भगवान है, खेल रहा है। लेकिन फिर भी भगवान है, लेकिन पहले तो समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और जिसे नारायण भगवान है और दूसरे भगवान के रूप है। लेकिन फिर भी यह है कि ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो साधक के शरीर है, हम साधक के शरीर में है, मालूम होना चाहिए कि ये भगवान है, हम उनके दास है, दस्य भाव में रहना है, हम उनके दास है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम परसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, ये संबंध ज्ञान है, हम कृष्ण के दास है और कृष्ण भी राजमान है आध्यात्मिक जगत में। दुर्भाग्यवश हम इस भौतिक जगत में गिर गया है, तो साधन भजन करते हुए वहां से निकलना है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। संबंध ज्ञान के साथ भजन करना है, जप करना है, सेवा करना है, मैं कृष्ण के दास हूं, ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। इसके बाद अगर ब्रज में प्रवेश करना है तो आगे जाना है, राग माग में प्रवेश करना है। सक्यम आत्मा निवेदनम, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए कृष्ण के साथ। और यहां पर भी ये ब्रिजवासियां जो कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार है, उनके अनुगत्य में चलना है। इसका नाम है राग अनुगा भक्ति, इसमें प्रवेश करना है। राग, जिनके पास राग है या रागात्मिक जन कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार। राग एक प्रेम की अवस्था है, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, तो इस सब ब्रिजवंशी के पास ये गूढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो उनके चिंतन करते हुए कृष्ण के और उनके परिकार के, और देखते हुए श्रवण करते हुए कि कैसे ठाकुर जी भगवान की कृष्ण की सेवा कर रहा है, जब उनके चिंतन कर रहा है और जब इच्छा भी हो जाता है कि प्रकट हो जाता है कि वैसे ही हमको सेवा करना है, तब आगे जा सकता है। और जब तो इसमें प्रवेश कर रहा है तो समझ सकता है कि शरीर नहीं है अपितु आत्मा है। और जब कलमाश से जब कलमाश के विनाश हो गया है लगभग, तब शुद्ध भावना शुद्ध चित्त से तुम समझ सकता है कि हमारे संबंध कृष्ण के साथ क्या है, सख्य भाव में, वत्सल्य भाव में या गोपी भाव में। और जब अनुभव कर सकते कि सख्य के संबंध में है, तो उसी समय कृष्ण के मित्र सुदाम, श्रीदाम, वसुदाम, सुबाल, गंधर्व, किंकिनी इत्यादि मदमंगल, और कृष्ण के साथ उनके लीला का श्रवण करना है, तब उनके भाव हमारे दिल में प्रकट हो जाता है, तब आगे जा सकते उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। जब वत्सल्य भाव में है तो बस ये यशोदा माँ का चिंतन करते हुए जिसे वे सेवा करते हैं, तब इसमें लीन हो सकता है, तब अपना स्वरूप अनुभव कर सकते हो। जो गोपी भाव में है श्रीमती रानी ललिता विशाखा रूप रति मंजारी, रूप गोस्वामी जो रति रूप मंजारी है उनके चिंतन कर रहा है, जो सेवा कर रही है रानी के कृष्ण के, उनके श्रवण करते हुए लीलाएं कृष्ण रानी और गोपियां उनके भाव लेकर तो अंत में सदन भजन करना है, तो ये रघुनु की भक्ति है। तो इसमें प्रवेश करना है तब उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, इसके बाद कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा असंभव है। तो ये यहाँ पर तो इसमें वैकुंठ भाव है और गजेंद्र के, और तो पहले तो समझना चाहिए कि हम शरणाई अपितु तो आत्मा है, कृष्ण भगवान है, विष्णु के विस्तार रूप है, लेकिन अंत में हाँ ब्रज भाव में प्रवेश करना है। शिव सनाए कि अभी हम ब्रज में रहता है लेकिन ब्रज भाव में भी रहना है, ब्रज में रहना पर्याप्त नहीं है लेकिन ब्रज भाव में रहना है। ब्रज भाव में मतलब यह है कि कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर का स्मरण करते हुए, कृष्ण के साथ उनके लीलाएं स्मरण करते हुए, श्रवण करते हुए हम ब्रज भाव में रह सकते हैं, तब वस्तु में उत्तम वस्तु पर पहुंच सकता है, और इसके बाद शरीर छोड़ने के बाद तो ब्रज में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की